पृष्ठ संख्या 149 तृतीय अध्याय हिंदी और फारसी सूफी काव्य में पर तत्व की धारणा। ईश्वर के संबंध में मुसलमानों के विभिन्न संप्रदायों की विभिन्न मान्यताएं हैं। इस विषय में दार्शनिक विचार प्रधानतः तीन प्रकार के हैं और उनके अनुसार इनके तीन वर्ग भी बन गए हैं, इजादिया, शुदूदिया एवं वजूदिया। इजादिया सर्वप्रथम वर्ग इजादिया उन विचारकों का है जो ईश्वर का अस्तित्व जगत से भिन्न स्वीकार करते हैं। इस मत को हम शुद्ध एकेश्वरवाद कह सकते हैं, जिसमें ईश्वर की सर्वोपरि सत्ता मानी गई है। इस एकेश्वरवाद को हम बाह्यार्थवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि वह जीवात्मा, परमात्मा और जड़ जगत तीनों को पृथक तत्व मानता है। एकेश्वरवादी ब्रह्मवाद, जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक स्वीकार किया जाता है, के कट्टर विरोधी हैं। इनके ईश्वर संबंधी विश्वास का निचोड़ कलमा ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलल्लाह में आ जाता है, जो कुरान की सूरतों के अंशों के मेल से बना है। इसका अर्थ है अल्लाह के अतिरिक्त और कोई अल्लाह नहीं, वह एकमात्र परमेश्वर है और मुहम्मद उसका रसूल अर्थात पैगंबर या दूत है। कुरान 1 में ईश्वर के स्वरूप के संबंध में लिखित आयतों में उसके कर्ता, रक्षक एवं संहारक स्वरूप का वर्णन है। साथ ही उसे सबसे महान इस अर्थ में कहा गया है कि संसार की सुंदरतम कल्पना से भी वह अधिक सुंदर तथा ऐश्वर्यवान है। कुरान में अल्लाह के एकत्व, असमानत्व एवं उसकी शाश्वतता का वर्णन किया गया है। अल्लाह वह है जो केवल एक है, शाश्वत है, स्वयंभू है। उसका कोई पुत्र नहीं, न वह किसी की संतान है, उसके समान कोई कहीं नहीं है। 2:1 कुरान संख्या 30, 20, 24 2 कुरान संख्या 112। इस पृष्ठ संख्या 150 कथन में अल्लाह के एकत्व के साथ ही उसकी असंगता का भी परिचय प्राप्त होता है। वह सृष्टिकर्ता होते हुए भी नियमों से परे है एवं शाश्वत है। इस ईश्वर का न आदि है और न अंत। 1 संसार का सर्वोपरि हितकारी तथा श्रेष्ठ न्यायकारी भी वह है। वह दंड 2 में कठोर है, परंतु जो उसमें विश्वास करते हैं और सन्मार्ग पर चलते हैं वे आनंद का उपभोग करते हैं। 3 प्रलयोपरांत निर्णय के दिन का स्वामी भी वही है। निर्णय के दिन मोहम्मद साहिब मध्यस्थ का कार्य करेंगे। इजादिया विचारधारा के अनुयायी इस बात में विश्वास करते हैं कि उसने सृष्टि का निर्माण कुन हो जा शब्द कहने मात्र से किया। 4 अतः यह सृष्टि उस परमात्मा द्वारा निर्मित है, वह अपरिमित सौंदर्य रूप। 5 अल्लाह अथवा परमात्मा सर्वोत्कृष्ट, सर्वशक्तिमान, महामहान एवं मानवीय बुद्धि को आतंकित कर देने में समर्थ है। इस संप्रदाय में ईश्वर का भय ही प्रधान है, जबकि बाद के सूफियों को उसका दयामय स्वरूप ही अधिक आकर्षित कर सका। इस विचारधारा के समर्थकों एवं पोषकों के अनुसार परम तत्व और सृष्टि का संबंध कर्ता और कृति का है। शुदूदिया दूसरा वर्ग उन विचारकों का है जो शुदूदिया मत के समर्थक हैं, और इनका विश्वास है कि ईश्वर इस जगत से परे है, किंतु उसकी सभी बातें इसमें किसी दर्पण के भीतर प्रतिबिंब की भांति दृष्टिगोचर होती हैं। इस पद्धति पर विचार करते समय हम वेदांत के प्रतिबिंबवाद पर पहुंचते हैं। 1 कुरान संख्या 57:3 2 कुरान संख्या 3:11 3 कुरान संख्या 13:29 4 कुरान संख्या 3:47 5 कुरान संख्या 62:4 इस मत के अनुसार जगत एक दर्पण के समान है, जिसमें ईश्वर का पृष्ठ संख्या 151 प्रतिबिंब पड़ता है। बिंब ब्रह्म है और यह जगत उसका प्रतिबिंब है। किस प्रकार एक ही अखंड सत्ता के पृथक पृथक बहुत से प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, इसका एक पुरातन एवं सनातन उदाहरण इस प्रकार है कि यदि अनेक पात्रों में पानी भरकर रख दिया जाए तो आकाश में प्रकाशमान सूर्य का प्रतिबिंब सब में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार सूर्य एवं सूर्य के प्रतिबिंब का जो संबंध है वह शुदूदिया संप्रदाय वालों को मान्य है। अतः सृष्टि और ब्रह्म में अंश अंशी का संबंध न होकर केवल बिंब प्रतिबिंब का संबंध है। जब ब्रह्म ने स्वयं अपने को देखना चाहा, अपनी लीला का विस्तार करना चाहा, तब उसने अपने को व्यक्त किया। यह समस्त सृष्टि दर्पण की भांति दीप्त हो उठी। ब्रह्म स्वयं ही दृश्य और दृष्टा है, ज्ञेय और ज्ञाता है। यह संपूर्ण जड़ चेतन जगत उस ब्रह्म ही का रूप स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश पृथक ज्ञात होता है। बालक यदि हाथ में दर्पण ले ले और उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर उसे अन्य समझे तो यह उसका अज्ञान है। वस्तुतः वे दोनों एक ही हैं। अतः ईश्वर एक है और वह इस नाम रूपात्मक जगत में प्रतिबिंबित हो रहा है। अनेक प्रतिबिंबों से उसकी एकता में कोई अंतर नहीं पड़ता। वह अपने प्रत्येक बिंब में स्थित है। उसका बिंब उसके स्वरूप का साक्षी है, जो साधक को उस तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। इस वर्ग के सिद्धांत को हम सर्वात्मवाद की संज्ञा दे सकते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार सूफी मत की विशेषता केवल तपोमय जीवन न होकर परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम भावना है, जिससे समस्त संसार उन्हें परमात्मा में मालूम होता है, जिसके आगे अंध परंपरा और अंधविश्वास कुछ नहीं ठहरने पाते और जिसका आधार अद्वैतवाद मूलक सर्वात्मवाद है। एक हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, स्वर्गीय डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, हिंदी अनुवादक श्री परशुराम चतुर्वेदी, लखनऊ, पृष्ठ 81। सूफियों के मतानुसार प्रकृति के भीतर दिखाई देने वाली संपूर्ण दीप्ति उसी परोक्ष सत्ता ही से उद्भाषित है। सारी प्रकृति और संस्कृति का पृष्ठ संख्या 152 आलोक और सौंदर्य उसी का प्रोद्भास और छाया स्पर्श मात्र है। अतएव यह संपूर्ण प्रकृति उसके सौंदर्य का दर्पण है। वह कण कण में सर्वत्र प्रतिबिंबित हो रहा है। वजूदिया तीसरा वर्ग उन चिंतकों का है जो वजूदिया विचारधारा के अनुयायी हैं, और उनका कहना है कि ईश्वर के अतिरिक्त वास्तव में अन्य कोई वस्तु नहीं है। वही एकमात्र सत्ता है और विश्व की अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें हम इमा उस्त वही सब कुछ है के अनुसार उसी का रूप समझ सकते हैं। इस वर्ग के लिए हम एकात्मवादी का नाम प्रयोग में ला सकते हैं। अतः इस विचारधारा के अनुयायी उस एक तत्व ही को इस सृष्टि रूप में प्रसारित मानते हैं। सूर्य एवं सूर्य की किरणों का जो संबंध है वह वजूदिया विचार वालों को मान्य है। इस विचारधारा की पृष्ठभूमि का सिंहावलोकन करें तो हमें ज्ञात होता है कि ईसा की 9वीं शताब्दी के चतुर्थांश में विद्यमान हजरत अबू याजीद या बस्ताम के बायजीद ने सर्वप्रथम रहस्यवाद में अद्वैत का निरूपण किया था। एक हजरत बायजीद बस्तामी के विषय में ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने अपनी पुस्तक तस्किरातुल औलिया में लिखा है कि वे कहा करते थे, हे खुदा, कब तक मेरे और तेरे भीतर मन, मैं और तू होगा। इस मन को मध्य में से उठा ले ताकि मेरा मन तब रूप हो और मैं कुछ न रहूं। हे खुदा, जब तक मैं तेरे साथ हूँ सबसे ज़्यादा हूँ और जब तक अपने साथ हूँ सबसे कम हूँ। दो हजरत बायजीद बस्तामी के समकालीन हजरत जुनेद ने उनकी भांति अद्वैत का प्रचार किया। जुनेद ने स्वयं कहा कि ईश्वर मेरी जीवा के द्वारा 30 वर्ष तक मनुष्य जाति से वार्तालाप करता रहा। तीन एक डॉक्टर विमल कुमार जैन, सूफी मत और हिंदी साहित्य, दिल्ली, 1955 ईस्वी, पृष्ठ 33। दो ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, तस्किरातुल औलिया, उर्दू अनुवाद, लाहौर, पृष्ठ 152। तीन प्रोफेसर ब्राउन और लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, भाग 1, लंदन, सन 1925 ईस्वी, पृष्ठ 427। पृष्ठ संख्या 153। खलीक अहमद निज़ामी ने अपने ग्रंथ तारीख़े मशायख़े चिश्त में उस समय के हजरत सरी सकाती के विषय में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है। हजरत सरी सकाती ने तौहीद का वह नज़रिया पेश किया जिसने बात को वहदतुल वजूद की शक्ल इख्तियार कर ली। एक परंतु वहदतुल वजूद अर्थात अद्वैतवाद का विवेचन सर्वप्रथम हजरत बस्तामी ही ने किया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। 10वीं शताब्दी ईस्वी में हजरत शिबली तथा उनके सहपाठी हुसैन इब्न मंसूर दो अल हल्लाज ने अद्वैतवाद का प्रचार एवं प्रसार किया। मंसूर अल हल्लाज ने अनहलक मैं खुदा हूँ की घोषणा की। स्वयं को ईश्वर कहना एवं पावन तथा पवित्र पुस्तकों के विधान का विरोध करना यह धर्मांध लोगों को पथ भ्रष्ट ज्ञात हुआ, इसलिए उन्हें 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मृत्यु दंड भोगना पड़ा, परंतु निधनोपरांत उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। प्रेमवाद प्रभु को प्रेम स्वरूपी मानने का श्रेय मंसूर अल हल्लाज ही को दिया जाता है। 3.1 खलीक अहमद निजामी, तारीखे मशायखे चिश्त, दिल्ली, सन 1953 ईस्वी, पृष्ठ 89। 2. मंसूर का यथार्थ नाम हुसैन इब्न मंसूर था। प्रोफेसर ब्राउन, अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, भाग 1, 361। ख, इब्न का अर्थ है पुत्र। सिद्ध सूफी का नाम था हुसैन और उनके पिता का नाम था मंसूर, परंतु वे अपने पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिता का नाम तो चमका दिया, परंतु आप अज्ञात हो गए। 3. डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, कानपुर, सन 1961 ईस्वी, पृष्ठ 262। वस्तुतः स्पेन के सुप्रसिद्ध रहस्यवादी कवि हजरत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी शेख अकबर, सन 1165-1240 ईस्वी ने अद्वैत को पूर्ण रूपेण विकसित किया। उन्होंने एशिया का भी भ्रमण किया, संभवतः इसी पृष्ठ संख्या 154 भ्रमण में उन्हें अद्वैत सिद्धांत को सर्वांशतः अध्ययन करने का अवसर मिला हो। इसी कारण स्पेन का सूफी मत प्रधानतः ध्यान परक था। 1. हजरत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी शेख अकबर के दार्शनिक विचारों का केंद्र बिंदु वहदतुल वजूद है। संक्षेपतः इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के अतिरिक्त सृष्टि में कोई अन्य वस्तु विद्यमान नहीं है, या यह कि जो कुछ वर्तमान है सब ईश्वर ही है। एकेश्वरवादियों के मतानुसार ईश्वर सृष्टि से सर्वथा पृथक है, परंतु सूफियों के विचारानुसार ईश्वर सृष्टि से अलग नहीं है। 2. हजरत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी के इस नजरिया से इस्लाम के बेहतरीन उत्तम दिमाग मुतासिर प्रभावित हुए और यह नजरिया तसव्वुफ की रूह बन गया। 3. अतः प्रायः सभी सूफियों का यही मत हुआ कि नित्य पारमार्थिक सत्ता एक ही है। यह अनेकत्व जो दिखाई देता है वह उसी एक ही का भिन्न भिन्न रूपों में आभास है। यह नाम रूपात्मक दृश्य जगत उसी सत्य की बाह्य अभिव्यक्ति है। दृश्य जगत भ्रम नहीं है, उस परम सत्ता की आत्मा अभिव्यक्ति या अपर रूप में उसका अस्तित्व है। अद्वैत से तात्पर्य द्वित्व के अभाव से है और सूफियों ने अद्वैतवाद पर विशेष बल देते हुए इसके अंतर्गत दो प्रकार के द्वैत का त्याग किया, आत्मा और परमात्मा के द्वैत का तथा ब्रह्म और जड़ जगत के द्वैत का। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद का अहम ब्रह्मास्मि वाक्य जिस प्रकार ब्रह्म की एकता और अपरिच्छिन्नता का प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार सूफियों का अनहलक वाक्य भी। अतः इस संप्रदाय वाले ईश्वर को सर्वव्यापक एवं सर्वस्थित मानते हैं। 1. डे लेसी ओ लेरी, अरेबिक थॉट एंड इट्स प्लेस इन हिस्ट्री, लंदन, सन 1939 ईस्वी, पृष्ठ 204। 2. मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी फतुहाते मक्किया, भाग 1, पृष्ठ 98। 3. खलीक अहमद निजामी, तारीखे मशायखे चिश्त, दिल्ली, सन 1953 ईस्वी, पृष्ठ 112। ऐसे सूफी एक आध्यात्मिक दृष्टि और परिपक्व आत्मानुभूति के द्वारा निखिल, पृष्ठ संख्या 155 एवं समूची संस्कृति में परिव्याप्त एक ही दिव्य सत्ता को देखने की चेष्टा करते हैं। वे समस्त प्रकृति को उसी प्रियतम के प्रेम बाणों से बिंधी हुई पाते हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत 1 ने इस संबंध में अपने नाम अपने भाव इस प्रकार प्रकट किए हैं। सूफी मत के अनुसार अध्यात्म तत्व अद्वैत तत्व है, वही ईश्वर या परमात्मा है, वही उपास्य है, वही सर्वस्व है। उस परमात्मा का ज्ञान हमें उसी के सहारे प्राप्त हो सकता है। हुजवीरी के कशफुल महबूब नामक ग्रंथ में लिखा है कि मैं ईश्वर के सहारे ही जानता हूँ। हमारे शरीर में भी ईश्वर का अंश है, जिससे वह चेतन दिखाई पड़ता है। उसका निवास स्थान हृदय है। हम ईश्वर अंश विशिष्ट उसी हृदय से अखंड ईश्वर का अनुभव करते हैं। 2. निष्कर्षता डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत लिखते हैं, सूफियों का यह सिद्धांत भी भारतीय उपनिषदों के सिद्धांत से मेल खाता है। भारतीय उपनिषदों में भी आत्मा के दो भेद किए गए हैं, एक प्राप्त आत्मा और दूसरी प्राप्त व्यात्मा। 3. ज्ञाता और ज्ञेय की यह एकता ही दर्शन की पराकाष्ठा है। इन दोनों के प्रत्यक्ष भेद को मिटा देना ही सूफी मत का लक्ष्य है। 4. अद्वैतवादी सूफियों में अनुदारता, असहिष्णुता आदि अवगुणों का पूर्ण रूपेण अभाव होता है। उनका दृष्टिकोण विशाल एवं लक्ष्य महान होता है। समुची सृष्टि में उसी एक सत का स्वरूप समझने के फल स्वरूप उन्हें समस्त संसार के प्रति असीम सहानुभूति होती है। उन्हें कोई प्राणी पराया प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार विश्व बंधुत्व की व्यापक एवं उदात्त भावना उत्पन्न हो जाती है। 1. डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, कानपुर 1961, पृष्ठ 292। 2. शूस्तरी AMA, आउटलाइंस ऑफ इस्लामिक कल्चर, भाग 2, बेंगलोर 1938, पृष्ठ 500। 3. कठोपनिषद 1.3.1, मुंडकोपनिषद 3.1.2। 4. डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, कानपुर 1961, पृष्ठ 292। ऐसे उदार साधक सूफी के वस्त्र पहनकर संसार से, पृष्ठ संख्या 156, विरक्त होकर स्वच्छ तथा निर्मल हृदय के साथ प्रेम स्वरूप परमात्मा के स्थिर और स्थायी आनंद में मग्न रहते हैं। फारसी एवं हिंदी सूफी काव्य में परतत्व की धारणा का संबंध इजादिया, शुदूदिया एवं वजूदिया संप्रदायों में से किसके साथ है, इस पर अब विचार करना अभीष्ट है। फारसी एवं हिंदी सूफी कवि तथा इजादिया मत। उदार चेता सूफी कवियों ने अपने ग्रंथारंभ में इजादिया मत का परिचय दिया है। प्रायः सभी फारसी सूफी कवियों ने इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि अल्लाह ने कुन हो जा कहने मात्र से समस्त सृष्टि का सृजन किया। फारसी साहित्य के सुप्रसिद्ध सूफी कवि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने अपने सुविख्यात ग्रंथ रत्न मंतिकुत्तैर के आरंभ में लिखा है, कर्द दर शश रोज हफ्त अंजुम पदीद, वज दो हर्फ आबुर्द नुह तारम पदीद। अर्थात प्रभु ने 6 दिनों में 7 सितारे उत्पन्न किए और 2 अक्षरों कुन से 9 वाला खाने आकाश प्रकट किए। इसी प्रकार अमीर खुसरो मतला उल अनवार में मसनवी शैली के अनुरूप आरंभ में ईश्वर वंदना करते हुए उक्त भाव को अभिव्यक्त करते हैं, अस दो रकम हस्तो चहार आफरो, यह रकमश रास्त हजार आफरी दो। अर्थात 2 अक्षरों कुन से 7 आकाश एवं 4 तत्वों की सृष्टि की, इस प्रकार एक शब्द से सहस्त्र वस्तुओं की रचना की। 1. ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंतिकुत्तैर लखनऊ, पृष्ठ 2। 2. अमीर खुसरो मतला उल अनवार लखनऊ 1934, पृष्ठ 4। तसव्वुफ की गुत्थियों को सुलझाने वाले एवं सूफी मत के गहन तथा पृष्ठ संख्या 157 गंभीर रहस्यों का उद्घाटन करने वाले फारसी सूफी कवि महमूद शबिस्त्री ने भी अपने ग्रंथ गुलशन-ए-राज के शुरू में लिखा है, तवानाए की दर यक तुरफुतुल एन जे काफो नून बरु आबुर्द कोनैन चुकाफे कुदरतश दम बर कलम जदा हजारा नक्श बर लोहे अदम जद। 1. अर्थात वह प्रभु ऐसा शक्तिशाली है कि उसने पल भर में काफ और नून 2 अक्षरों अर्थात कुन से दोनों लोकों को प्रकट किया। जब उसकी प्रकृति ने लेखनी को आज्ञा दी तो लेखनी ने अनस्तित्व की तख्ती पर हजारों चित्र अंकित किए। इसी प्रकार हिंदी सूफी कवियों ने भी अपने ग्रंथों के आरंभ में लिखा है कि परमात्मा ने केवल एक शब्द कुन के उच्चारण मात्र द्वारा पृथ्वी से लेकर आकाश तक के सारे सृष्टि की रचना की। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में लिखा है कि कुन शब्द से संसार की सृष्टि हुई है, जेही नाद जगत यह करो 2। अर्थात उसने केवल यही कहा कि हो जा और यह सब कुछ हो गया। इसी प्रकार शेख रहीम प्रेम रस में इसी भाव को व्यक्त करते हैं, एक ऐ शब्द कहा कुन केरा सिरजा भूमि आकाश घनेरा 3। अर्थात उसने कुन शब्द कहकर भूमि से लेकर आकाश तक की सृष्टि का निर्माण किया। 1. महमूद शबिस्त्री गुलशन-ए-राज संपादक तथा अनुवादक मौलवी अहमद अहसन दिल्ली पृष्ठ 1। 2. नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी प्रयाग पृष्ठ 134। 3. शेख रहीम भाषा प्रेम रस। और जिस प्रकार महमूद शबिस्त्री आदि फारसी के कवियों ने तवाना, शक्तिशाली एवं श्रष्टा लिखा है, उस प्रकार जायसी आदि ने भी लिखा है। पृष्ठ संख्या 158। तुम करता बड़ सृजनहारा, हरता धरता सब संसारा। एक, अर्थात वह परमात्मा महान स्रष्टा, पालक एवं संहारक है। अथवा वह सब कीन जहां लगी कोई, वह नहीं कीन काहु कर को होई। हुत पहले अरु अब है सोई, पुनि सो रहे रहे नहीं कोई। जो चाहा सो कीन है सी, करे जो चाहे कीन। बर्जन हार न कोई, सबे चाहि जीव दीन। दो, अर्थात जहाँ तक किसी वस्तु का भी अस्तित्व है, उसका आदि कारण वही है और वह स्वयं किसी का पैदा किया हुआ नहीं है। वह भूतकाल में भी विद्यमान था और अब भी विद्यमान है, और भविष्य में जब कोई नहीं रहेगा तब केवल वही रहेगा। उस प्रभु ने जैसा चाहा वैसा किया, और जैसा वह करना चाहता है वैसा ही करता है। वह अपने मन का राजा है, उसके कार्यों में कोई भी बाधक नहीं हो सकता, चाहे सृष्टि के समस्त प्राणी भले ही प्राण दे दें। नूर मोहम्मद ने अपनी रचना इंद्रावती में उक्त भावों को इस प्रकार प्रकट किया है। धन्य आप जग सृजन हारा, जिन बिन खम्ब आकाश संवारा। हो जग को आपु ही राजा, राज दो जग को तही छाजा। दीन्हा नैन पंथ पहचानो, दीन्हा रसना ताहि बखानो। बात सुने कहे सर्वन दीन्हा, दीन्हा बुद्धि ज्ञान तही चीन्हा। गगन की शोभा कीन्हे सितारा, धरती शोभा मनुष्य संवारा। आप गुपुत ओ परगट, आप आद ओ अंत। आप सुने ओ देखे, कीन मनुष्य बुधवंत। तीन, एक, जायसी ग्रंथावली अखरावट पृष्ठ 305। दो, वही पद्मावत पृष्ठ 3। तीन, नूर मोहम्मद इंद्रावती पहला भाग पृष्ठ 1। पृष्ठ संख्या 159। कलमा के प्रथम भाग ला इला इल्लाह, अल्लाह के अतिरिक्त और कोई अल्लाह नहीं, को अमीर खुसरो इस प्रकार लिखते हैं। नेस्त खुदाए बजुज आ बेनियाज, कुस्त खुदावंद खुदावंद साज। एक, अर्थात उस एक निरपेक्ष प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं। ऐसा और कौन प्रभु है जिसने इस प्रभु को रचा हो, अर्थात प्रभु अजन्मा है। जैसी इसी भाव को इस तरह व्यक्त करते हैं, है ना ही कोई ताकर रूपा, ना उही सन कोई आही अनुपा। दो, उक्त पंक्तियों से यही ध्वनित होता है कि ईश्वर एक है, उसके समान दूसरा कोई और नहीं है, वह अद्वितीय है। फारसी और हिंदी के सब सूफी कवियों ने हजरत मोहम्मद को अल्लाह का पैगंबर माना है और अपने ग्रंथों में ईश्वर वंदना के पश्चात उनकी स्तुति लिखी है। सब सूफी कवि स्वीकार करते हैं कि जब ईश्वर ने शून्य से इस विश्व की रचना की, तो सर्वप्रथम हजरत मोहम्मद का नूर ज्योति उत्पन्न किया। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार इस विषय में लिखते हैं, आचे अवल शुद्ध पदीद अज जैब गैब, बुद नूरे पाके उबे है हेच रैब। तीन, अर्थात जो वस्तु सर्वप्रथम शून्य से उत्पन्न हुई, वह निस्संदेह हजरत मोहम्मद का पावन एवं पुनीत प्रकाशक था। जायसी के कथानुसार ईश्वर ने शून्य से इस विश्व की रचना की। पहले न तो आकाश था, न पृथ्वी थी और न सूर्य चंद्रमा थे, केवल शून्य ही था। उसी में सर्वप्रथम हजरत मोहम्मद का नूर प्रकाश उत्पन्न हुआ। गगन हुआ न मही होती, होते चंद नहीं सूर। ऐसे ही अंधकूप मह रचा मोहम्मद नूर। चार, एक, अमीर खुसरो मतला उल अनवार लखनऊ पृष्ठ 4। दो, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 3। तीन, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंतिकुत्तैर लखनऊ पृष्ठ 17। चार, जायसी ग्रंथावली अखरावट पृष्ठ 303। पृष्ठ संख्या 160। उपर्युक्त कुछ उद्धरणों से यद्यपि यह सुस्पष्ट है कि फारसी तथा हिंदी सूफी कवियों ने इजादिया मत का परिचय दिया है, तथापि आगे उन्होंने सर्वात्मवाद, अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद से मिलते जुलते विचारों को ही अभिव्यक्त किया है। अपनी चिंतन धारा का आधार कुरान को बनाने के कारण उन्हें इजादिया मत अमान्य कैसे हो सकता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, जिस प्रकार हमारे यहाँ अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, विशुद्धाद्वैतवादी और द्वैतवादी आदि सब श्रुतियों को ही आधार मानकर उन्हीं के वचनों को प्रमाण में लाते थे, उसी प्रकार ये सूफी कुरान के वचनों की अपने ढंग पर व्याख्या करते थे। कहते हैं कि अद्वैतवाद का बीज उन्हें कुरान के कुछ वचनों में ही मिला, जैसे अल्लाह के मुख के सिवा सब वस्तुएं नाशवान हालिक हैं, चाहे तू जिधर फिरे अल्लाह का मुंह उधर ही पावेगा। एक मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अपने ग्रंथ हकायके हिंदी में लिखते हैं, तसव्वुफ का प्रारंभिक आधार अल्लाह की वार्ता कुरान तथा मुहम्मद साहब की वाणी हदीस अथवा इस्लामी शरीयत ही है। दो प्रारंभिक काल के एक सूफी शेख अबू बकर तिमिस्तानी का प्रवचन है, मार्ग खुला हुआ है और किताब कुरान हमारे समक्ष वर्तमान है। तीन एक जायसी ग्रंथावली प्रस्तावना पृष्ठ 137। दो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हकायके हिंदी हिंदी अनुवाद काशी संवत 2014 भूमिका पृष्ठ 2। तीन कुशेरी विसालय कुशेरिया मिस्र पृष्ठ 34। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार मुसलमान लोग एकेश्वरवादी हैं, इसलिए बहुत लोग मुस्लिम सूफी साधकों को भी एकेश्वरवादी समझ लेते हैं। बहुत लोग हिंदुओं के पुराने ग्रंथों में आए हुए अद्वैतवाद से एकेश्वरवाद को अभिन्न मानते हैं। 19वीं शताब्दी में कई सुधारक आंदोलन हुए हैं जिनमें उपनिषदों के अद्वैतवाद को मुसलमानों के पृष्ठ संख्या 161 एकेश्वरवाद से अभिन्न मान लिया गया है, परंतु सूफी लोग ठीक एकेश्वरवादी नहीं हैं। एक इस विवेचन के उपरांत हम कह सकते हैं कि सूफी कवियों ने कुरान के आधार पर परम तत्व के सृष्टि निर्माण कर्तव्य शक्ति संबंधी कथन कहे हैं और परम सत्ता को अद्वितीय महान शक्तिमान सृष्टा सृजनहार आदि कहा है। इससे उन्हें हम ठीक एकेश्वरवादी नहीं कह सकते और न ही उनके चिंतन पद्धति का नाता इजादिया मत से जोड़ सकते हैं। हमें उनकी विचारधारा का संबंध शुदूदिया एवं वजूदिया से स्थापित करना चाहिए। फारसी एवं हिंदी सूफी कवि तथा शुदूदिया मत। शुदूदिया मत से प्रभावित होकर फारसी एवं हिंदी सूफी कवियों ने परम तत्व के प्रकाश स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि उस एक के प्रकाश से समस्त संसार प्रकाशित है, वह ज्योति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। प्रकृति के भीतर दृष्टिगोचर होने वाली संपूर्ण दीप्ति उसी परोक्ष सत्ता ही से उद्भासित है। सारी संस्कृति का प्रकाश और सौंदर्य उसी का प्रोद्भास और छाया स्पर्श मात्र है। महमूद शबिस्त्री गुलशने राज में लिखते हैं, जे फैजश हर दो आलम गश्त रोशन दो, अर्थात आप प्रभु की कृपा से दोनों लोक आलोकित हुए। ख्वाजा हाफिज भी सृष्टि के कण कण में उसी परम तत्व के प्रकाश को देखते हैं और उनके विचारानुसार उसी नूरे अजली की झलक दोनों लोकों में मौजे मार रही है। हर दो आलम तक फरोगे रुए उस्त गुफ्त मत पैदा ओ पिन्हा नीज हम। तीन एक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मध्यकालीन धर्म साधना इलाहाबाद सन 1932 ईस्वी पृष्ठ 254। दो महमूद शबिस्त्री गुलशन राज पृष्ठ 1। तीन दीवाने हाफिज लाहौर काशीराम प्रेस पृष्ठ 459 पृष्ठ संख्या 162। अर्थात दोनों लोक उसके मुख की एक झलक ही तो है। मैंने यह बात प्रत्यक्ष रूप से भी कह दी है और प्रतीकों के माध्यम से परोक्ष रूप से भी। ख्वाजा हाफिज ने एक अन्य शेर में इस भाव को इस प्रकार प्रकट किया है, ए फरोगे माहे हुस्न अज रुए रुख शाने शुमा, आबरू ए खूबी अज चाहे जनक दाने शुमा। एक अर्थात हे ईश्वर, सौंदर्य के चंद्र की चमक तुम्हारे चमकीले चेहरे से है और अच्छाई के मुखमंडल की दमक तुम्हारे सुंदर एवं प्रभायुक्त चिबुक कूप से है। कवि सरमद ने भी निम्न रुबाई में लिखा है कि वही ज्योति नाना प्रकार से प्रकाशित हो रही है। कर दी तू अलम वदिल रुबाई खुदरा, हम दर फनों में हर आशनाई खुदरा, ई दीदा की बिनास्त तमाशाई एतुस्त हर लहजा बसद रंग नुमाई खुदरा। दो अर्थात तूने क्या क्या सौंदर्य न दिखाया, तूने क्या क्या प्रेम प्रकट न किया, ज्ञान चक्षु तुझे कण कण में परव्याप्त देख सकते हैं, तू प्रत्येक पल अपने आप को नाना प्रकार से प्रकाशित कर रहा है। इसी प्रकार हिंदी सूफी कवियों ने अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। जायसी संपूर्ण सृष्टि की लालिमा में प्रियतम ही के आलोक का परम साक्षात्कार करते हैं, यथा सूरज बूढ़ी उठा होई ताता, अमजीत टेसु बन राता, भा बसंत राती वनस्पति और आते सब जोगी जति। तीन एक वही पृष्ठ चार। दो रुबाई आते सरमत दिल्ली शाहजहानी प्रेस रुबाई नौ पृष्ठ 19। तीन जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 98। उस ज्योतिर्मय की ज्योति से सूर्य चंद्र नक्षत्र रत्न माणिक और पृष्ठ संख्या 163 मोती प्रदीप्त हो रहे हैं। उस परोक्ष ज्योति एवं सौंदर्य सत्ता की ओर जायसी इस प्रकार संकेत करते हैं। रवि शशि नखत दीप ही ओहि ज्योति रतन पदारथ माणिक मोती। एक मंझन भी लिखते हैं कि वही ज्योति सर्वत्र प्रकट हो रही है। उसी ज्योति से जिस दीपक को निर्मित किया उसका नाम हजरत मोहम्मद है। बाकी जाति प्रगट सब ठाऊं दीपक सृष्टि जो मोहम्मद नाऊं। दो ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने भी इस संबंध में कहा है, खुदा ने सर्वप्रथम अपनी ज्योति से हजरत मोहम्मद की ज्योति को उत्पन्न किया, तत्पश्चात ज्योति से अपार सृष्टि की रचना की। हक चुदीद आ नूरे मुतलक दर हुजूर आफरीद अज नूरे उ सद बहरे नूर। तीन खुदा ने जब अपना प्रकाश हजरत मोहम्मद में देखा तब उनके प्रकाश से सृष्टि रूपी प्रकाश के सागर को पैदा किया। उसी प्रकाश रूप परमात्मा ने अपने ही अंश रूप हजरत मोहम्मद एवं सृष्टि को उत्पन्न किया, अतः मोहम्मद और सृष्टि उसके प्रकाश रूप के ही विकार हैं। जैसे भी लिखते हैं कि उस प्रभु ने पूर्णिमा की कला के सदृश ज्योतिर्मान तथा उज्ज्वल हजरत मोहम्मद को अपनी ही ज्योति से उत्पन्न किया। उसी के लिए विधाता ने अपनी प्रथम ज्योति का प्रकाश किया, उसी के लिए इस समस्त सृष्टि की रचना की। हजरत मोहम्मद को परमात्मा ने संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में दिया जिसकी ज्योति से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान हो गया। किन्हे सी पुरुष एक निर्भरा नाम मोहम्मद पूनो करा प्रथम ज्योति विधि ताकर साजी और तेहि प्रीति सिहित उपराजी दीपक लेसी जगत कह दीन्हा भा निर्मल जग मार्ग चीन्हा। चार एक वही पृष्ठ 45। दो मंझन कृत मधुमालती वाराणसी पृष्ठ 4। तीन ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तैर लखनऊ 16। चार जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 4 पृष्ठ संख्या 164। फारसी एवं हिंदी के सूफी कवि अपने अद्वैतवाद का स्पष्टीकरण प्रतिबिंबवाद के सहारे करते हैं। इन लोगों का कहना है कि संसार वास्तव में उस परमात्मा की ही नश्वर छाया मात्र है, उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं, वह स्वयं अदृश्य है, जगत ही उसका दृश्य रूप है, वह स्वयं बिंब है, यह जगत उसका प्रतिबिंब है। हजरत सुल्तान अबू सईद अबुल खैर ने इस प्रतिबिंबवाद की ओर संकेत निम्न पंक्तियों में किया है। ए आईना रा दादा जिला सूरते तू यक आईना कस नदीद बेसूरते तू नैने की जे लुत्फ दर हमा आईना हा खुद आमदाई बदीदने सूरते तू। एक अर्थात हे प्रभो तेरे रूप ने दर्पण को चमकाया हुआ है, किसी ने तेरे रूप के अतिरिक्त एक दर्पण भी नहीं देखा। नहीं नहीं तू कृपा करते हुए अपना रूप दिखाने के लिए सब दर्पणों में आया है तथा ए आई नाए जाते तू जाते हमाकस मिसाते सिफाते तू सिफाते हमाकस। दो ए प्रभो तेरी जात का दर्पण सबके अस्तित्व का कारण है, तेरे गुणों का मुकुर सबके गुणों का कारण है। भाव यह कि समस्त प्राणी उस प्रभु रूपी दर्पण की परछाई हैं, उसी ईश्वर के गुण हम सब में वर्तमान हैं। इस प्रकार परम तत्व एक है किंतु उसका प्रतिबिंब सर्वत्र पड़ता है। एक रुबाई आते अबू सईद अबुल खैर लाहौर शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श रुबाई 370 पृष्ठ 110। दो वही रुबाई 227 पृष्ठ 76। हिंदी साहित्य में बार बार इस उदाहरण का उल्लेख किया जाता है कि यदि 50 सहस्त्र गगरी भरकर रख दी जाएं तो सूर्य के एक होने पर भी उन सब में उसके अनेक प्रतिबिंब पड़ते हैं। पृष्ठ संख्या 165। गगरी सहस 50 जौ को पानी भरी धरे सूरज दीपे आकाश मोहम्मद सब मह देखिए। एक बिंब प्रतिबिंब भाव का उल्लेख नूर मोहम्मद ने अधिक किया है। वे लिखते हैं कि इस विश्व दर्पण में वही प्रतिभासित हो रहा है, देखी परे ओहि दर्पण माही। दो नूर मोहम्मद इंद्रावती में भी इसी भाव को इस प्रकार प्रकट करते हैं, जस दर्पण निर्मल रहे तस देखा अधिकार दर्शन एक नारी को सब आदरस मझार। 3, जिस प्रकार एक व्यक्ति के चारों ओर रखे हुए दर्पणों में उसकी छाया अनिवार्य रूप से पड़ती है, उसी प्रकार एक ब्रह्म की छाया समस्त सृष्टि में पड़ रही है, परंतु स्वच्छ दर्पण में निर्मल परछाई पड़ती है। अतः सूफी साधना में कल्ब या हृदय की स्वच्छता एवं निर्मलता पर विशेष बल दिया गया है। फारसी एवं हिंदी के सूफी कवियों ने इस भावना को बार बार व्यक्त किया है। सुल्तान अबू सईद अबुल खैर लिखते हैं, दूरम अगर जे सादते खिदमते तू, पैबस्ता दिलस्त आईना ए तलते तू। 4, अर्थात यद्यपि मैं तेरी सेवा के सौभाग्य से वंचित हूँ, तथापि सदैव मेरा हृदय तेरे सुंदर मुख का दर्पण बना हुआ है। 1, जायसी ग्रंथावली अखरावट 331। 2, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी प्रयाग 2007 पृष्ठ 92। 3, नूर मोहम्मद इंद्रावती पृष्ठ 10। 4, रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर लाहौर शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श रुबाई 368 पृष्ठ 109। पृष्ठ संख्या 166। फारसी के कवि ख्वाजा हाफिज के शब्दों में, आईना ए सिकंदर जामे जम अस्त बिंगर, ताबर तू अर्जा दारत हवाले मुल्के दारा। 1, अर्थात जमशेद बादशाह का प्याला सिकंदर का दर्पण है, इसमें देख ताकि तुझ पर दारा के देश की दशा व्यक्त हो जाए। यहाँ प्रतीकों द्वारा कवि इस भाव को स्पष्ट करता है कि मानव अपने स्वच्छ हृदय में ही प्रभु के देश की परछाई देख सकता है। मौलाना रूम के निम्न छंद दिल की सफाई की ओर संकेत करते हैं, आईना ए दिलचू शब्द साफी औ पाक, नक्शहाय बीनी बरू अज आबो खाक, चुना हासिल शब्द दर दिल सफाइश, बयक जलवा कुशायत कारहाइश। 2, भाव यह है कि हृदय में ऐसी स्वच्छता हो कि एक ही दर्शन से काम बन जाए। मौलाना जामी ने भी हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ करने के लिए कहा है, बगदरे आईना हुस्ने तुमी नुमायद रुए, दिरेग की आईना ए मा नुहफता दर जंगस्त। 3, तेरा सौंदर्य अपने आप को दर्पण के मुताबिक अनुसार प्रकट करता है, अफसोस कि हमारा शीशा जंग में छिपा हुआ है। यदि दर्पण साफ हो तो उसमें चेहरा अच्छी तरह से दृष्टिगत होता है, और यदि उस पर जंग लगा हुआ हो तो चेहरा साफ तौर पर दिखाई नहीं देता। यही हाल है मनुष्य के दिल का, जो खुदा के जमाल का अक्स प्रतिबिंब लेने में दर्पण की भांति है। यदि दिल साफ होगा तो दिव्य सौंदर्य सुंदर रूप से दृष्टिगोचर हो सकेगा। यदि हृदय में अवगुणों के कारण खोट आ गई हो तो खुदा का हुस्न सौंदर्य अच्छी तरह से रोशन नहीं हो सकेगा। 1, दीवाने हाफिज लाहौर काशीराम प्रेस पृष्ठ 9। 2, मौलाना रूम मरगुबूल कलूब लाहौर इजाजी प्रेस पृष्ठ 31। 3, मौलाना जामी दीवाने जामी चाप खाना ए हैदरी पृष्ठ 35। पृष्ठ संख्या 167। जामी को खेद है कि उसका दिल मलिन है, और इस प्रकार वह हुस्ने हकीकी अलौकिक सौंदर्य का प्रतिबिंब दिखाने के लिए असमर्थ है। सूफियों का मत है, हुस्न आईना ए हक है और दिल है आईना ए हुस्न। ख्वाजा हाफिज ने प्रतीकों द्वारा अपने गुरु के हृदय की स्वच्छता का वर्णन निम्न शेर में इस प्रकार किया है, सूफी बया की आईना साफस्त जामरा, ताबिगरी सफाए मै लाल फामरा। 1, अर्थात ए सूफी आजाम प्याले का आईना शीशा साफ है, ताकि तू लाल फाम मैं लाल वर्ण की मदिरा को देख सके। यहाँ सूफी का अर्थ हमें मस्त सूफी, साहिब फजूल अर्थात बकवादी, कपटी, छली आदि लेना चाहिए, क्योंकि ख्वाजा हाफिज के समय सूफी छल छंदों का शिकार हो गए थे और वे अवगुणों के साकार रूप बन गए थे। अतः जहाँ कहीं सूफी शब्द का प्रयोग ख्वाजा हाफिज अपने दीवान में करते हैं, उसका अर्थ प्रायः साहिब फजूल ही लेना चाहिए। ऐसे सूफी का हृदय मलिन होता है। आईना प्रतीक है दिल का, जाम प्रतीक है गुरु का, और लाल फाम में प्रतीक है इश्क हकीकी या अलौकिक प्रेम का। अतः भाव यह है कि गुरु का हृदय निर्मल है, इस कारण प्रभु का प्रतिबिंब उसमें पूर्ण रूपेण दृष्टिगत होता है। हिंदी सूफी कवियों ने भी हृदय की स्वच्छता पर बल दिया है, क्योंकि हृदय के निर्मल दर्पण में ही प्रभु का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ता है। 1, ख्वाजा हाफिज दीवाने हाफिज लाहौर काशीराम प्रेस पृष्ठ 18। अतः घट को शुद्ध करना अनिवार्य एवं अपरिहार्य है, ताकि घट के भीतर ही उस परम ज्योति के दर्शन हो सकें। कासिम शाह अपने कृति हंस जवाहिर में इस प्रकार कहते हैं, पृष्ठ संख्या 168। हिये मांज दर्पण के लेखो, घट ही दर्श जवाहिर देखो, घट ही सात द्वीप नौ खंडा, घट ही सात स्वर्ग ब्रह्मांडा, घट ही समय सीप औ मोती, घट ही निरख परे यह ज्योति। एक, अतः विमल घटी में प्रभु की परम ज्योति के दर्शन हो सकते हैं। हृदय में निर्मलता आने पर ही उसका आभास मिलता है। प्रियतम का वास उज्जवल घट में ही है, हृदय भीतर पियु बसे। दो, उस्मान ने भी यही कहा है कि जिस प्रकार कस्तूरी में सुगंधी रहती है, उस प्रकार घट में ही निरंजन का वास है। मृगमद माह वास ज्यों रहई, त्यों घट माह निरंजन अहई। तीन, फारसी साहित्य के प्रसिद्ध कवि उर्फी के शब्दानुसार ईश्वर लामकान है, उसका कोई निवास स्थान नहीं, परंतु पाक दिल निष्कलंक हृदय में अवश्य ही उसका मकान आवास हुआ करता है। निशाने जा हमी जू था निशा अजबे निशा याबी, मकाने दिल तलब कुंता मका दर लाम का बीनी। चार, अर्थात तू अपनी रूह का निशा ढूंढ ताकि बेनिशा खुदा की खोज तुझे मिल सके। तो अपने दिल के मकान की खोज कर ताकि तुझे ला मकान में अपना मकान प्राप्त हो सके। संक्षेप में शुदूदिया मत के अनुयायी यह विचार रखते हैं कि सारा संसार एक दर्पण रूप है जिसमें वह परम तत्व ही प्रतिबिंबित हो रहा है। वह कण कण में आभासित है, दृष्टा और दृश्य वस्तुतः उसी के प्रतिरूप हैं। वह स्वयं ही करता है, स्वयं ही कार्य है और स्वयं ही कारण है। अर्थात इस त्रिपुटी का आधार एक ही सत्ता है। हृदय का स्वच्छ एवं निर्मल होना अनिवार्य है। जितना ही हृदय शुद्ध होगा उतना ही उसका प्रतिबिंब स्पष्ट होगा। एक, कासिम शाह हंस जवाहिर पृष्ठ 151। दो, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 276। तीन, चित्रावली पृष्ठ 68। चार, कवि उर्फी कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 77।